ओम शांति। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस ईश्वरीय परिवार के एक बहुत ही अनन्य रतन आदरणीय राजयोगिनी शिलू दीदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। दीदी जी का ऐसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आपको हम बहुत लंबे समय से सोनी टीवी, जी टीवी, जागरण टीवी और बहुत सारे चैनल्स में सबसे पहले जो ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट करने का दीदी जी ने ही ये कार्य शुरू किया था। तो दीदी जी एक बहुत ही प्रोलिफिक ऑरेटर हैं और आपकी जो सेवाएं हैं बाल्यकाल से ही चल रही हैं। 65 ईयर्स दीदी जी को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हो चुके हैं और 1976 से आप फुल टाइम हेडक्वार्टर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये जो राजयोग शिविर का जो हम प्रारूप देख रहे हैं आज के समय में, उस सेवाओं को शुरुआत करने का श्रेय भी आपको ही जाता है। आप राजयोग शिविर की भी डायरेक्टर हैं और जो राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है उसके भी आप वाइस चेयरपर्सन हैं। ज्ञान सरोवर अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड के आप वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं और बहुत ही अच्छे इंटरप्रेटर हैं हिंदी, इंग्लिश, सिंधी। जितने भी यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं फॉरेनर्स के या जितने भी विंग्स के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें दीदी जी का बहुत विशेष रोल रहता है। और आपने लगभग वर्ल्ड के जितने भी पांचों कॉन्टिनेंट्स में लगभग मेजर सभी कंट्रीज में जाके आप ये ईश्वरीय संदेश पहुंचा चुके हैं। तो आज हमारे बीच में दीदी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो हिस्ट्री है कि कैसे ये जो विद्यालय है छोटे से सैपलिंग से आज इतने बड़े 140 कंट्रीज में इतने वट वृक्ष का रूप ले चुका है, तो वो उस हिस्ट्री को हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय शिलु दीदी जी,
सभी कहेंगे ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ज्ञान सरोवर परिसर में हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपने लिए पहली बार जब मुझे साहिल भाई ने बताया कि ये बहुत सुंदर प्यारा सा ग्रुप आ रहा है और इस ग्रुप का नाम रखा है नेचर लवर्स ग्रुप, प्रकृति से आपका बहुत प्यार है, तो जितना ही प्रकृति से आपका प्यार है उतना ही प्रकृति पति से भी तो प्यार होगा ना। प्रकृति पति कौन है? परमात्मा है, वृक्षपति कहते हैं उन्हें, इसलिए बृहस्पति की दशा सबसे ऊंची मानी जाती है। और गुरुवार को हम लोग सत गुरुवार कहते हैं क्योंकि सत गुरु का वो दिन है। बृहस्पतिवार भी कहते हैं, वृक्षपति का दिन है। तो परमात्मा की सही पहचान भी आपको मिली होगी। हम किसको कहते हैं शिव बाबा? अभी इन्होंने कहा हम किसको कहते हैं शिव बाबा और कैसे वास्तव में शिव बाबा परमात्मा ने ही ये दिव्य कार्य आरंभ किया है और माध्यम बनाया है। यहाँ ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं है, माध्यम बनाया पिताश्री ब्रह्मा बाबा को, जो पीछे उनका फोटो है। तो जिस संस्था में आप आए हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। विश्व की आत्माएं यहाँ आती है और आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करती है। धर्म और आध्यात्म, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में बहुत अंतर है। कई समझते हैं ये रिलीजियस संस्था है, तो रिलीजन की जहाँ बात आती है तो वहाँ बहुत हदें हो जाती है, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, मैं इस धर्म को इतना नहीं मानता, इस धर्म को मानता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि ये इसका संबंध आत्मा के साथ है। और धर्मों जहाँ बात आती है तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सभी को जोड़ देती है, सभी को जोड़ती है, क्योंकि स्पिरिट यानी आत्मा से संबंध है। और जहाँ आत्मा की बात है तो वहाँ तो हम सब आत्माएं हैं, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, अरबिक हो, कोई भी हो, सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान है। इसीलिए अध्यात्म सबको जोड़ता है। तो क्या है वास्तव में इस संस्था का मूल परिचय, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कोई पूजा पाठ, कोई जप तप उस रूप से तो नहीं है, और अभी तो आप इतना खुशी में नाच भी रहे थे, तो ज़रूर कुछ ऐसा विशेष है जो आज की समय की आवश्यकता है, मांग है, क्योंकि दुनिया से खुशी चली गई है सच पूछो तो, और खुशी के लिए अल्पकाल के साधन अपनाते हैं, छोटे मोटे एंटरटेनमेंट के लिए, खुशी के लिए कई प्रकार के साधन हैं, लेकिन सच्ची खुशी तो आंतरिक है, सच्ची खुशी या आत्मा की खुशी है। और वो खुशी कैसे प्राप्त होगी, जब हम खुद को पहचानेंगे, जीवन के लक्ष्य को पहचानेंगे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है और उसके लिए क्या करना है। क्योंकि प्रकृति से तो प्रेम ज़रूर हो, क्योंकि ये शरीर तो प्रकृति से ही बना हुआ है, लेकिन प्रकृति के ऊपर भी कोई शक्ति है, और अगर उस शक्ति को पहचान लिया तो प्रकृति से और प्यार हो जाएगा, क्योंकि आज तो प्रकृति अब देख रही है दुख भी दे रही है ना, दुख भी दे रही है ना, वैसे तो प्रकृति दाता के रूप में है। एक गीत है बहुत सुंदर गीत, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनों का जो दूजों को दे वो सच्चा इंसान, हाँ वही सच्चा भगवान अगर हम कहें तो, जो दाता बन के दे वो भगवान के समान है। तो प्रकृति तो दाता बन के देती है, लेकिन क्या हम मनुष्य आत्माएं भी ऐसे दाता हैं, क्योंकि हम कहते हैं तीन प्रकार के मनुष्य है। एक प्रकार के वो हैं जो समझते हैं तो मुझे लेना ही है, लेना ही है, जिसको हम कहेंगे मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, ऐसे भी कई लोग हैं। और दूसरे हैं जो कहते हैं अच्छा मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। और तीसरे हैं जो कहते हैं हाँ मेरा भी तेरा, हम सबका, क्योंकि दाता तो परमात्मा है, वो उसने दिया है तो हम सबके लिए है। और नेचर प्रकृति भी यही सोचती है, जिसको हम इसलिए प्रकृति को हम देवता मानते हैं, भारत में प्रकृति के एक एक तत्व को देवता के रूप में पूजते हैं ना, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, उसको कोई देवी का रूप या देवता का रूप दिखाते हैं, क्योंकि वो देते हैं, देते हैं। लेकिन क्या इनसे भी ऊंची कोई स्थिति है? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, वो तो आसुरी वृत्ति है। मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, ये साधारण मानवीय वृत्ति है। मैं अपना तो अपना, अलग अलग हो जाओ, दीवार बना देते बीच में। पर मेरा भी तेरा, और वो कहे दूसरा भी कहे मेरा भी तेरा, तो हम सबका। लेकिन इनसे भी ऊंची कोई स्थिति है? क्या समझते हैं, है कोई इनसे भी ऊंची स्थिति? इनसे ऊंची स्थिति है न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब किसका? किसका? ईश्वर का। तो हम भी उनके, आप भी उनके, ये प्रकृति भी उनकी, रचयिता तो वही है ना। और उनसे अगर प्रीत है तो ऑटोमेटिकली सबसे प्रीत है। ऐसे नहीं कि इनसे प्रीत है, इनसे नहीं, इनसे इनसे नहीं। कई कहते हैं ना, आई लव एवरी वन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट माई नेबर। पड़ोसी से प्यार नहीं है, बाकी तो सबसे प्यार है। तो पड़ोसी से भी प्यार क्यों नहीं? और हम तो उसके लिए बहुत सहज युक्ति बताते हैं। सबसे प्यार कैसे हो? एक परमात्मा से प्यार करो। जैसे बीज को पानी दे दिया तो फिर एक एक पत्ते को देने की जरूरत है? बीज को पानी दे दिया तो बीज अपने आप सब पत्तों तक पहुंचाएगा पानी। तो इसीलिए परमात्मा से प्रीत माना सबसे प्रीत, और सब कुछ उनका है। आप भी उनके हो, हम भी उनके हैं। तो सब हृदयों की दीवारें टूट जाती है, और यही इस समय की मांग है, इस समय की यही आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले खुद को जानना होगा, फिर उस परमात्मा को जानना होगा, और फिर उनसे संबंध रखना होगा, जिसको हम राजयोग कहते हैं। पर ये राजयोग सिखाए कौन? क्योंकि परमात्मा को तो हम सब भूल गए हैं आज, और इसके कारण परमात्मा को अपनी पहचान खुद देनी पड़ती है। इसलिए गीता में है, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं अपनी पहचान खुद देता हूं। तो हम ये बड़े फखर से कहते हैं, निश्चय और नशे से कहते हैं कि परमात्मा ने अपनी पहचान हमें दी है, और उनसे हम योग लगाते हैं, उसी को हम राजयोग कहते हैं। राजयोग माना सबसे ऊंचा योग। तो ये कई प्रकार के योग है ना गीता के अंदर, एक एक चैप्टर एक एक योग है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सहज योग, बुद्धि योग, कई है। लेकिन सबसे ऊंचा जो भगवान ने सिखाया वो राजयोग, और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हमें सिखाया है। अर्थात मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, और उनसे मुझे सच्चा संबंध जोड़ना है। योग मना मिलन, और राजयोग मना आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसलिए यहां वो पहचान मिलती है, तो जो आपको मिली होगी। लेकिन कैसे यहां ये पहचान सबको दी जाती है, परमात्मा ने कैसे ये दिया है, वो थोड़ा सा हम आपको इसका इतिहास बताएंगे। क्योंकि आप ये भी सोचते होंगे ना, ये संस्था इतनी बड़ी, अभी इतना परिचय दिया, 140 देशों में हमारी ब्रांचेस हैं, और हमारी जैसे हजारों बहनें भाई भी इसमें समर्पित हैं, और आप जैसे लाखों परिवार हमारे विभिन्न सेवा केंद्रों पर नियमित विद्यार्थी के रूप में आते हैं, तो अवश्य ये प्रश्न होगा, इतनी बड़ी संस्था ये कैसे चलती है, कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो वो थोड़ा सार में आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो फाउंडर हैं वो पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनका फोटो आप देखते होंगे, उनको हम कहते हैं हमारे अलौकिक पिता। और हर एक को वास्तव में तीन पिता है, शरीर का पिता तो हर एक जानता है, अपना अपना है, हर एक का अलग अलग होगा, लेकिन दूसरा पिता है आत्मा का पिता, जो जिसको हम परम आत्मा कहते हैं। पर तीसरा भी पिता है जिसको हम अलौकिक पिता कहते हैं, जिसके लिए भगवान ने जिसको रच करके ये सृष्टि रची, जिसको कहा ब्रह्मा, आदि पिता। तो आदि पिता प्रजा पिता वो ब्रह्मा कहाँ से आया, कब आया, कैसे ये सृष्टि रची, क्योंकि ऐसे तो कभी नहीं था कि संसार में कुछ भी नहीं था, ऐसे कभी नहीं था। तीन शक्तियां अनादि अविनाशी है, एक शक्ति है आत्मा जो अनादि अविनाशी, किसने पैदा नहीं किए, दूसरी शक्ति है परमात्मा, उसको भी किसी ने पैदा नहीं किया, और तीसरी शक्ति है ये प्रकृति, इसी को भी इसको भी किसने पैदा नहीं किया, तीनों अनादि अविनाशी है। लेकिन खेल दो के बीच में, आत्मा और प्रकृति, जिसको हम कहते हैं पुरुष और प्रकृति, आत्मा पुरुष, पुरुष माना अथॉरिटी भी है, और प्रकृति माना सेवक, सेवक बनकर के सेवा करे, जो देती रहे, और पुरुष इसका सदुपयोग करे, इसको इसका दुरुपयोग ना करे, इसका निराकरण, इसका विनाश ना करे। आज वही स्थिति है ना, आज जो जो चारों ओर क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं, अभी भी दुबई में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी पर, और हमारे कई भाई बहने गए हुए हैं दुबई उसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो नेचर को प्यार करना माना नेचर का दुरुपयोग नहीं करना, पर वो तब होगा जब पहले परमात्मा से प्यार होगा। तो परमात्मा ने अपनी पहचान जिसके द्वारा दी, और फिर से जो आज स्थिति दुनिया की हो गई है, जो पहले ऐसे नहीं थी, प्रकृति वो सुख रूप थी, आज वो दुख रूप हो गई है, तो फिर से सुख रूप बनाने के लिए प्रकृति पति को आना पड़ता है। तो खेल दो के बीच में, आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, और इस खेल में जब पुरुष प्रधान है प्रकृति के ऊपर, और उस प्रकृति का वो सदुपयोग करता है, तो यह संसार स्वर्ग है। पर धीरे धीरे वो स्थिति आ जाती है जब पुरुष अधीन हो जाता है प्रकृति के, प्रकृति ये शरीर और पुरुष बना आत्मा। तो जब प्रकृति हावी हो जाती है पुरुष पर, पुरुष को अधीन कर देती है, आत्मा दास बन जाती है और ये प्रकृति मालिक बन जाती है, तो ये संसार नरक बन जाता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाए तो गाड़ी चलाना खेल है, इस अ गेम, परंतु अगर ड्राइवर का कंट्रोल छूट जाए और गाड़ी किस मानो ब्रेक फेल हो जाए, तो कंट्रोल छूट गया और गाड़ी मालिक बन जाए केवल, तो क्या होगा, एक्सीडेंट, डेथ, सोरो, सफरिंग, न जाने क्या क्या। तो इसीलिए आज वो स्थिति है जो पुरुष की बजाय प्रकृति मालिक बन करके पुरुष पर हावी हो गई है, इसीलिए प्रकोप जो आज हम देख रहे हैं चारों ओर, जिससे कितना नुकसान हो रहा है, वो आज हो रहा है। तो आवश्यकता है कि पुरुष मालिक बने प्रकृति पर, और फिर से ये संसार स्वर्ग बनेगा। लेकिन पुरुष को फिर से मालिक कौन बनाए, जो परम पुरुष है परमात्मा, वही बना सकता है। इसलिए वही कार्य परमात्मा कर रहे हैं, इसलिए आत्मा का ज्ञान दिया कि हे आत्मा तुम पहचानो अपने आप को और मुझे याद करो, मेरे से सब संबंध जोड़ो, तो मैं तुम्हारे जो भी पाप किए हुए वो सब भस्म कर दूंगा, और राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाऊंगा, ये गीता का सार है। अर्थात मानव से देवता बनाऊंगा, नर से नारायण बनाऊंगा, नारी से लक्ष्मी बनाऊंगा। तो वो कार्य परमात्मा का यहाँ चल रहा है पिछले 87 इयर्स से, जिनके लिए जिसके लिए निमित्त बनाया पिताश्री ब्रह्मा बाबा को, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे, ज्वेलर थे और हीरे जवाहरातों का के जेवर बनाते थे। कोलकाता में उनका बहुत बड़ा शोरूम था जहाँ पर उनके बहुत बड़े बड़े ग्राहक आते थे, क्योंकि हीरे जवाहरातों के जेवर कौन खरीदेगा, कोई साधारण व्यक्ति तो अफोर्ड तो नहीं कर सकता। तो उस समय राजा महाराजा लोग थे, वही अफोर्ड कर सकते थे। तो बाबा का राजाओं महाराजाओं से बहुत उठना बैठना होता था। अब रानियां तो उनके घरों उनके दुकान में नहीं आ सकती थी, तो बाबा खुद महलों में जाकर राजाओं को वो ज्वेलरी बना के बेचते थे। और दूसरे अंग्रेज फॉरेनर्स, उस समय अंग्रेजों का राज्य था और ये 1936 की बात है, 1936। तो कैसे आप पिताश्री जी बहुत बड़े बिजनेसमैन तो थे ही, पर उतने ही रॉयल थे, बहुत रॉयल। वो राजा महाराजा लोग कहते थे कि भगवान ने बहुत बड़ी भूल की, आपको बनाना चाहिए था राजा, पर आपको तो एक बिजनेसमैन बना दिया और हमको राजा बनाया। यानी इतनी रॉयल्टी थी उनके अंदर जो राजा में होनी चाहिए। लेकिन जब उनकी उम्र 60 वर्ष की हुई, 60 इयर्स, उस समय उनको बहुत वैराग आ गया। उसके पहले तो बाबा धन संपत्ति तो थी उनके पास, पर जितने ही धनी थे उतने ही दानी भी थे, बहुत दानी थे। जो भी उनके द्वार पर जाता था कभी हाथ खाली नहीं लौटता था। और जितने ही दानी थे उतने ही बहुत बड़े भक्त थे, विष्णु की भक्ति करते थे। अब तीनों विशेषताएं उनके अंदर थी, लेकिन एक खोज थी सत्यता को जानने की, मैं कौन हूँ, क्यों ये संसार भगवान ने बनाया, हम कैसे उनसे मिल सकते हैं, इतना दुख क्यों है दुनिया में, इतना पाप क्यों है, मानो बहुत प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते थे। और उसके लिए वो शास्त्र भी पढ़ डाले, बहुत गुरुओं के पास जाते थे, लेकिन किसी से भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। तो कैसे एक दिन, ये 1936 की बात है जब उनकी उम्र 60 वर्ष थी, तो अचानक वो विष्णु की भक्ति कर रहे थे, तो अचानक विष्णु जी ने उनको दिव्य साक्षात्कार कराया अपना। चार भुजाधारी विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आके उपस्थित हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु, और उनको एक वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं चतुर्भुज हूं तुम भी मेरे जैसे हो। और बाबा देखता रह गया कैसे जगन्नाथ श्रीनाथ द्वारकानाथ द्वारकाधीश, ये सब जो विष्णु के अलग अलग मंदिर हैं भारत में, उनके ही वो विष्णु का स्वरूप उनके सामने आता गया, एक के बाद आते गए, और हर एक रूप ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। बाबा तो देखते रह गए। बहुत देर तक ये साक्षात्कार उनको चला, नहीं तो किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते ना, साक्षात्कार होता है तो जो वरदान मिलता है उस इष्ट से वो होता है तथास्तु। ऐसे वरदानी हाथ करके कोई देवी का साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे तथास्तु, माना तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, वैसा ही होगा। लेकिन ये वरदान कुछ अलग ही था, अहम चतुर्भुज तत्व त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो। तो बाबा जब ध्यान से उतरे तो उनको आया कि ये कैसा वरदान मिल गया, मैं तो इन जैसा नहीं हूं, मैं तो फैमिली मैन हूं। 5 बच्चे थे उनको, 3 बेटियां 2 बेटे, और सबकी शादी भी हो गई थी, पोतरे दोतरे सब थे, बड़ा फैमिली मैन था। सिंध हैदराबाद में रहता था, पर कलकत्ता आना जाना करता था, मुंबई में भी आना जाना करते थे, वहाँ भी उनका बहुत बड़ा मकान था, कलकत्ता में भी मकान था, दुकान था, बहुत कुछ था। तो कैसे ये जब दर्शन हुए तो बाबा को सोच चला कि मैं इन जैसे थोड़ी हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ, भक्त लोग तो ऐसे ही कहते ना। लेकिन इतना बड़ा वरदान मिला, इसका मतलब क्या है, मैं तो इन जैसा हूँ नहीं। तो ये प्रश्न उन्होंने अपने गुरु से पूछा, जो उस समय उनके गुरु थे। तो गुरु को भी इतना समझ में नहीं आया कि क्या इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन एक बात जो उसने उसको महसूस हुई कि ये तो बहुत बड़ा वरदान है, और अगर तू मेरे जैसे हो ये कहा है तो इसका मतलब है कि जरूर भगवान को आपसे बहुत बड़ा काम करवाना है, इसीलिए कहा मेरे जैसे हो, क्योंकि मेरे जैसा ही काम आपको करना है। तो गुरु ने कहा कि उसके लिए आप, तो उसने कहा मुझे क्या काम करना है भगवान का, वो भी तो मुझे मालूम हो। तो गुरु ने कहा हो सकता अभी आपको भगवान और दर्शन दे, उसके लिए क्या करो, आप एकांतवास में चले जाओ, ये बिजनेस को थोड़ा छोड़ो, एकांतवास में चले जाओ। तो बाबा ने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, तो उनके एक मित्र रहते थे बनारस में, वाराणसी में, तो वो हम अक्सर निमंत्रण देते रहते थे कि यहाँ आकर थोड़े दिन विश्राम कीजिए, आप बहुत बिजनेस कर रहे हो आप। तो बाबा ने सोचा मैं बनारस जाता हूँ, और बनारस जाकर वो मित्र की एक बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत सुंदर था, तो वो रोज शाम को विष्णु का ध्यान करते थे, और वहाँ उनको अचानक कुछ विचित्र साक्षात्कार हुए। पहला साक्षात्कार क्या हुआ, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार, दुनिया कैसे खत्म हो गई ये बाबा ने देखा, 3 रूप से विनाश देखा। पहला रूप था एटॉमिक वॉर, अणु युद्ध, और बाबा ने देखा कि आकाश से जैसे वो मंडरा रहे हैं हवाई जहाज, और उसमें से एक मिसाइल नीचे गिरता है, और जैसे मिसाइल नीचे गिरा वो आग फैला दी, चारों ओर आग ही आग, आग ही आग, और देखता ही रहा बाबा कि कैसे सब आग की लपेटों में राख बन गया, एवरीथिंग टर्न्ड इनटू एशेस, सारी दुनिया जलकर राख हो गई। फिर बाबा देखता ही रहा कि मैं क्या देख रहा हूं। फिर थोड़े समय के बाद दूसरा साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने सिविल वॉर का रूप देखा कि कैसे आपस में लड़ रही है, बंदूकें चल रही है, तलवारें चल रही है, काट रहे हैं, मार रहे हैं, मानो एक दो को का खून कर रहे हैं। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि एक रक्त की नदियां, खून की नदियां, चारों ओर डेड बॉडीज, खून की नदियां और डेड बॉडीज, बस यही देखा, सब खत्म। फिर थोड़े समय के बाद बाबा को तीसरा साक्षात्कार हुआ, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं विनाश लेकर आई, प्राकृतिक आपदाएं, चारों ओर प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि और ओले, न जाने क्या क्या, मानो पांचों ही तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्वों ने इतना कहर मचाया, जो देखते ही देखते बाबा ने देखा सब कुछ खत्म हो गया। तो 3 रूपों से विनाश का दृश्य बाबा ने देखा, और उसके बाद बाबा को बहुत वैराग आ गया, और भी वैराग आ गया दुनिया से। और फिर कहा कि हे भगवान, ये क्या मुझे दिखा दिया, क्या ये दुनिया ऐसे खत्म होने वाली है, फिर हे भगवान ये दुनिया बनाई क्यों, अगर खत्म ही होने वाली है तो बनाई क्यों। और फिर मुझे क्या करना है, ये भी प्रश्न उनके मन में उठे, क्योंकि गुरु ने कहा था भगवान आपको कहेंगे क्या कार्य आपको उनका करना है, तो कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन बहुत वैराग आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद बाबा को एक और साक्षात्कार, बहुत साक्षात्कार हुए बनारस में उनको, और दूसरा क्या साक्षात्कार हुआ, एक बहुत सुंदर दुनिया नहीं, उसके पहले बीच में क्या साक्षात्कार हुआ, एक अखंड ज्योति का महतत्व, सुनहरा लाल प्रकाश, जैसे ये आकाश तत्व है ना वैसे सुनहरा लाल, गोल्डन रेड कलर चारों ओर, और उस महतत्व में छोटे 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 सितारे, जैसे हम आकाश में सितारे देखते हैं वैसे सितारे, एक पेड़ के रूप में उल्टा झाड़, बीज ऊपर और वो झाड़ नीचे, वो बिंदु बिंदु जैसे सितारे नीचे एक झाड़ के रूप में, और बाबा देखता ही रह गया ये क्या है, और फिर देखा कि एक एक सितारा उस पेड़ से, उस ये सितारों के पेड़ से वो नीचे आया, नीचे आते 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 वो धरती पर आया, धरती देखी, और धरती पर आते ही एक एक सितारा एक एक देवता बन गया, देवता जैसे देवताएं होते हैं ना वो रूप बन गया, एक देवी और देवता, और देखते ही देखते बाबा ने देखा ये सारा संसार बदल गया, एकदम बदल गया, इतनी सुंदरतम प्रकृति हो गई जो उसने देखी विनाश की, उसको एकदम बदल करके एक ऐसा सुंदर संसार देखा जो कभी देखा नहीं था, और फिर एक महल देखा सोने का महल, उसमें दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, और एक आवाज आई उनको, आकाशवाणी हुई, लखीराज, हाँ उनको सब लखीराज बाबू के नाम से पुकारते थे, ही वॉज वेरी फेमस, तो लखीराज बाबू लेखराज था पर लखीराज बाबू, तो हे लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद एक सत्युगी दुनिया आने वाली है, और ये दुनिया तुमको बनानी है, ये दुनिया तुमको बनानी है। बाबा तो देखता ही रह गया इतनी सुंदर दुनिया, अब जब ये आवाज आई उनको ये दुनिया तुमको बनानी है, तो जब होश में आए तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सब व्हाट डज ऑल दिस मीन, इनको कुछ पर समझ में नहीं आया, क्या ये ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल धन की शक्ति यूज कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, पर ये दुनिया तो नहीं बदल सकता हूँ ना, तो हे भगवान ये दुनिया मुझे बनानी है तो कैसे बनानी है वो भी तो मुझे बताओ। अब वो कौन बताए, वो फिर और आगे, इट वॉज मोर एंड मोर यू नो रिडल्स एंड रिडल्स, जो उनको समझ में नहीं आ रही थी बातें, लेकिन एक पॉजिटिव बात ये हुई कि उनको एकदम पूरा वैराग आ गया संसार से, और कहा कि अब मैं ये बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान का मुझे कुछ बड़ा कार्य करना है तो ये बिजनेस तो नहीं कर सकता हूँ। फिर कलकत्ता गए, अपने पार्टनर को सारा समझाया, और जो इनका हिस्सा था वो लिया, और बाबा वापस हैदराबाद सिंध चले गए बिजनेस को अपना वाइंड अप करके, पार्टनर को शॉप दे करके या जो भी। और जब वापस आए हैदराबाद सिंध जहाँ रहते थे, वहाँ उनके परिवार ने देखा तो एकदम बदल गया, कहाँ उनका ठाट था राजाओं महाराजाओं के साथ अंग्रेजों के साथ घूमना, और ये तो एकदम बदल गया, धोती कुर्ता बस बिल्कुल सिंपल, और एक एकांत में बैठने लगा बस सब बातों से दूर। तो परिवार वाले तो बहुत हैरान हो गए, ये इसको हो क्या गया है, लेकिन बाबा ने किसी को कुछ नहीं बताया, और अपने कमरे में रहता था और बस शांति में रहता था, अपने इष्ट को तो याद करता ही था। तो फिर अचानक एक दिन अपने घर में उनको एक बहुत विचित्र साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्होंने ज्योति का साक्षात्कार किया, ज्योति एकदम ऐसी तेजोमय ज्योति, वह जितनी ही तेजोमय थी, वो तेज बड़ा प्यारा था, शीतल था, इतना प्यारा शीतल था, शीतल तेज था, जिससे लगा कि बस अभी मैं इसका आलिंगन कर लूं। और फिर बाबा ने देखा कि वो जो तेज था, वो शक्ति थी, लाइट थी, वो धीरे 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 उनके करीब आई, और करीब आते आते उनके अंदर प्रवेश हो गई। ये बाबा ने अनुभव किया कि जैसे मेरी अंदर चली गई और आंखें बंद हो गई। पहले तो देखा वो लाइट आई, आंखें खुली और एकदम वो लाइट आई और जैसे मेरी अंदर चली गई और आंखें बंद, और बाबा का जो चेहरा था वो एकदम लाल लाल हो गया, एकदम तेज उनके चेहरे पर, उनके चारों ओर तेज ही तेज। अब ये उनके परिवार वालों ने देखा, और उस समय क्या देखा कि उन्होंने, उनकी आंखें तो बंद थी लेकिन इनके मुख से आवाज निकली, जैसे आकाशवाणी इनके मुख से, मुख आवाज क्या निकली, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूं, मैं शिव हूं। वो शिव परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया, मैं शिव हूं, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम। सारे जो ईश्वर के गुण हैं वो गुण उनके मुख से निकले, और फिर शिवोहम ये मुख से, ये आकाशवाणी जैसे मुख से हुए, मुख से इतनी गहरी आवाज निकली। अब बाबा की आंखें बंद, बाबा की आवाज नहीं थी, वो बहुत गहरी आवाज थी। और फिर इनके रिश्तेदारों ने, जो परिवार वाले थे, इनकी पत्नी थी, बहू थी, बच्चे थे, सब थे, तो जब इन्होंने आंख खोली तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया, क्योंकि इतना तेज उनकी आंखों में, आंखें लाल। तो बाबा ने बस आंखें घुमाकर कहा, कोई तेज था, कोई प्रकाश था, कोई ज्योति थी, और वो बहुत मीठी, बहुत प्यारी थी, और वो प्रकाश धीरे धीरे मेरे अंदर आ गया, ये मैंने कुछ अनुभव किया। ये बाबा ने दो शब्दों में कहा, पर क्या था बाबा को भी समझ में नहीं आया। परंतु फिर उनको याद आया कि भगवान ने मुझे कुछ काम दिया है, पर कैसे करना है पता नहीं, नई दुनिया कैसे बनानी है। परंतु उसके बाद चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार होने लगे? पहला चमत्कार ये हुआ कि जो बाबा को देखता था ना, जैसे हम खड़े हैं और देखता था बाबा को, वो बाबा का चेहरा बदल जाता था और वहां श्री कृष्ण का चेहरा आ जाता था। जैसे श्री कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजाता हुआ, ये पैर टेढ़े किए हुए बस ऐसे खड़ा है, जो उनको देखता था जैसे श्री कृष्ण खड़ा है। और कई लोगों को घर में बैठे साक्षात्कार होने लगे। हैदराबाद सिंध की बात है ये, जिसमें वो घर में क्या देखते थे कि श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बगीचे में है और उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक श्री कृष्ण थोड़ा दूर चला जाता है, और बाबा, ब्रह्मा बाबा, वो दादा लेखराज, वो जैसे उनके सामने आ जाता है, और श्री कृष्ण पीछे से कहता है इशारे में कि मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ पहले, मैं इनके द्वारा तुमको मिलूंगा। अब ये कौन है ये तो सब लोगों को तो पता नहीं था, और घर बैठे इनका भी साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का भी हुआ। तो दूर दूर से लोग आने लगे कि ये कौन है दादा लेखराज, जिनके पास जाने से श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और ये इतनी बड़ी न्यूज बन गई जो अमेरिका के टाइम मैगजीन, वो इंटरनेशनल न्यूज उस मैगजीन में आती है, टाइम मैगजीन, उसमें भी न्यूज आ गया कि भारत, उसमें भारत में था हैदराबाद सिंध, तो भारत में एक व्यक्ति है जिसके पास चमत्कारिक शक्ति है, जो उनके पास जाता है उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं उनसे। अब ये कैसे होता है, बाबा को खुद हैरानी होती थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो ये एक ऐसा साक्षात्कार हुआ। और दूसरी बात, दूसरी चमत्कारिक शक्ति क्या हुई, या कहेंगे क्रांति हो गई, कि उसमें महिलाओं को ज्यादा साक्षात्कार हुए, नारी शक्ति को, स्त्रियों को। और उस समय जो सिंध का वातावरण था, क्योंकि वहां जो बहनें थी, स्त्रियां थी, वो सब चार दीवारों में कैद, और जो पुरुष थे वो तो बिजनेसमैन थे हैदराबाद सिंध में, देवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सारे वर्ल्ड में जाते थे, बहुत ही फॉरवर्ड थे हैदराबाद सिंध में, और लेडीज बिल्कुल बैकवर्ड, बिल्कुल शोषित स्त्रियां थी, बस बच्चे पैदा करना, बच्चों की पालना करना, कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो स्थिति थी उस समय, और तो ये नारियों को घर बैठे ये साक्षात्कार होने लगे, तो ढूंढने लगे और बाबा के पास आती थी, और बाबा को देखते जैसे उनको साक्षात्कार होने लगते थे। तो ये मानो उस समय का वातावरण था। अब वो जो बहनें आती थी, उनमें से एक थी जो हमारी मम्मा है, जगत अम्बा सरस्वती, जिसको अलौकिक माँ कहते हैं, वो उस समय 17 साल की थी। उनके फादर की डेथ हो गई थी, वो भी बिजनेसमैन थे, अमृतसर में रहते थे और हीरे जवाहरातों की बिजनेस थी, ज्वेलर थे, लेकिन अचानक उनको उनका दिवाला निकला, सब कुछ खत्म हो गया उनका, सब कुछ खत्म, सब दुकान मकान सब खत्म, और उनको हार्ट फेल हो गया, हार्ट ही डाइड, गुजर गए। तो जब हार्ट फेल हो गया तो ये बस माँ बेटी थे, अब जैसे वो तो कंगाल हो गए, तो उनका जो भाई था, मतलब इनके मदर का भाई, मामा है मामा का, उसने उनको हैदराबाद सिंध बुला लिया कि आप अभी क्या करेंगे यहाँ, देवाला मारा और पति भी गुजर गया। तो जब हैदराबाद सिंध में वो आए दोनों माँ बेटी, तो माँ बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, लेकिन उसकी जो बेटी थी, जिस जो हमारी मम्मा बनी अलौकिक माँ, वो बहुत होशियार थी, स्कूल में अवार्ड्स लेती थी, बहुत गायन कला, संगीत कला, नृत्य कला सब में प्रवीण थी। अब वो जब आई तो वहाँ भी उसने अपना जलवा दिखाया स्कूल में। अब क्या हुआ, उनकी माँ तो रोती रही, पूरा साल भर रोते थे वहाँ पर, स्यापा करना, छाती पीटना, काले काले कपड़े पहनना, बाल खुला रखना, मतलब वेरी दयनीय स्थिति थी स्त्री की जो विधवा बनती थी। कोई पुरुष के अगर कोई दुकान पर भी जाए तो पुरुष लोग जो दुकान चलाते थे वो पानी की बाल्टी लेके वहाँ छिड़का देते थे कि अपशगुन आया कुछ न, जैसे मना बहुत बुरी दशा। अब ऐसी स्थिति में बाबा का ये कार्य चला, और फिर तो इनको ये पता था कि मेरी माँ इतनी दुखी है, बहन को, मम्मा को, तो किसी ने इनको कहा इनको दादा के पास ले जाओ, बाबा के पास, जहाँ उनको शांति मिलेगी, क्योंकि वो भी कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, लेडीज कृष्ण की भक्ति करती थी। तो ये माँ को लेके गई, और जैसे माँ ने बाबा को देखा, उनको एकदम बाबा से कृष्ण के दर्शन हुए। तो जो रोती रोती आई ना, वो हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी श्री कृष्ण को देख करके। अब ये भी न्यूज बन गई, क्योंकि वो बहुत फेमस थी लड़की, फेमस हो गई थी, अवार्ड लेती थी, तो लोकल न्यूज में तो आता ही है सब, कि ऐसे राधिका उसका नाम था, इनकी माँ रोते रोते आई और हंसती हंसती गई है, ऐसे न्यूज बन गई थी। अब और आने लगे, तो अब ये स्कूल में चर्चा चलने लगी, क्योंकि स्कूल पढ़ते थे, तो स्कूल में चर्चा चलने लगी कि यहाँ एक दादा लेखराज है, उनके पास जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं। लेडीज मना लड़कियों का स्कूल था, तो उसमें सब ने कहा अच्छा हम लोग सब जाएंगे वो देखने के लिए। तो दूसरी जो बहन थी दादी प्रकाशमणि, जिनका नाम रमा था, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही 38 वर्षों तक दादी प्रकाशमणि, वो उस समय 15 साल की थी, तो वो भी उसी फ्रेंड सर्कल में थी। तो सब ने कहा हम जाएंगे उनसे, बाबा से मिलने, जिनसे कृष्ण के दर्शन, वो भी कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। तो उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं, पिता मुझे जैसे कहेंगे। तो पिता से पूछने से पहले ही पिता ने इनको कहा, दादी प्रकाशमणि के पिता ने, उनका नाम रमा था, प्राधि प्रकाश मणि का, कि रमा तुम जाके देख कर आओ, एक दादा लेख रहा जब उनसे दर्शन होते हैं, आप देख के आओ क्या होता है वहां, क्या होता है, कैसे होता है। तो ये गई और जैसे गई तो बाबा को देखा और एकदम ट्रांस में चली गई, ध्यान में चली गई। और वही जो इसने देखा था एक साक्षात्कार कि श्री कृष्ण कहता है मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, तो वही श्री कृष्ण का दर्शन उनको हुआ क्योंकि उनके सामने आ गई थी। अब फिर जब वो ध्यान से उतरी तो बाबा ने उनको बुलाया, क्योंकि बाबा ने उस समय उन्हीं दिनों में एक स्कूल खोला था, ये सब उसी समय हुआ 1936 में, एक स्कूल बनवाया था लड़कियों के लिए, क्योंकि बाबा को नारी शक्ति के लिए बहुत सम्मान था, बहुत विस्तार है, तो लेकिन लड़कियों के लिए स्कूल, ताकि वो लड़कियों को कुछ आध्यात्मिक विद्या मिल सके, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था और मुसलमान थे ये सब थे, तो जो हिंदू लड़कियां सिख लड़कियां मतलब जो थी वो तो इनमें नहीं थी, तो उनके लिए जैसे स्कूल खोला, और वहां वो बाबा चाहते थे कि ऐसी उनको आध्यात्मिक विद्या मिले। अब ये जो बच्ची थी रमा, इनके पिताजी ज्योतिषी थे, है ना, ज्योतिष विद्या जानते थे, और इसके लिए क्या भविष्यवाणी की थी कि ये मेरी बेटी मीराबाई की तरह बनेगी और अपना जीवन भगवान को अर्पित करेगी। तो बाबा ने इनको बुलाया अपने पास और कहा कि ऐसे मैंने स्कूल बनवाया है, आप उसमें टीचर बनोगी? तो उसने कहा मैं पिता से पूछो, पर तो बाबा ने उसके लिए श्री कृष्ण को अपना जीवन देना होगा, नौकरी के हिसाब से नहीं, तनख्वाह लेने की बात नहीं है, लेकिन अपना जीवन भगवान को अर्पित करना होगा। इसने कहा मैं अपने पिता से पूछू। तो जब पिता को ये सब बातें बताई, क्या अनुभव किया, पिता ने तो कहा आपका जीवन ही श्री कृष्ण को भगवान को अर्पित है, तो आप जरूर जाइए। तो फिर इसके बाद वो गई बाबा के पास और बाबा ने उसको स्कूल में टीचर बनाया। मानो इस ये दो एग्जाम्पल, लेकिन बहुत सारी आई बहनें और बाबा के पास आके अपना जीवन समर्पित किया, मानो फैमिलीज की फैमिलीज भी आई, अभी वो बहुत विस्तार है। खैर उसके बाद मानो एक अलौकिक परिवार तैयार हो गया बाबा के पास, बहुत बड़ा मकान था बाबा का, कई मकान थे हैदराबाद सिंध में बाबा के, तो वहां वो रहने लगे। फिर उसके बाद शिव परमात्मा ने उनके द्वारा ये एक आदेश दिया सब भाई बहनों को जो भी समर्पित हुए, कि हम अपने जीवन को अब पवित्र और योगी बनाएंगे, फॉर द बिगिनिंग, लेकिन हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब पवित्र और योगी ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो समाज ने इसको स्वीकारा नहीं और उन्होंने विरोध किया, लेकिन बाबा ने कहा ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लोग तो नहीं समझे ना, उन्होंने सोचा इनके पास कोई जादू है, ये है। बाबा कहते हैं मेरा जादू तो है ही नहीं, मैं खुद भी सोच रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर तो विरोध किया, तो बाबा ने फिर वो माहौल छोड़ के बाबा कराची चले गए सबको लेकर के, जो फ्री थे परिवार से छुट्टी थी उनको लेके कराची चले गए, और कराची में बाबा ने अलग अलग मकान लिए और वहां रहने लगे। तो 14 साल 1937-38 से 1950 तक 14 साल कराची में रहे और वहां तपस्या की। देवर बहुत 350 भाई बहने थे, मानो दुनिया की निगाहों से दूर कराची में तपस्या की। अब उस तपस्या के दौरान तीन बातें हुई दुनिया में। पहली बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 39-45, 6 साल तक विश्व युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए, और वो कब युद्ध खत्म हुआ, जब एटम बॉम्ब गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पर, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति। और दूसरा हुआ वहाँ क्वेटा शहर है बलूचिस्तान में, वहाँ बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, जबरदस्त, पूरा का पूरा शहर धरती में चला गया था, इतना जबरदस्त भूकंप था, सब मारे गए थे। और तीसरी बात क्या हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में और ये संस्था वही थी कराची में। तो जब ये बातें सुनते थे तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये क्या है, ये ऐसे हो रहा है? तो शिव परमात्मा कहते थे ये तो ट्रेलर है, जो अणु युद्ध भी हुआ ना, ये दो शहरों का नाश हुआ, ये ट्रेलर है, अभी रियलिटी तो आगे है। फिर जब भूकंप आया तो भी बाबा से पूछा, बाबा ये विनाश हुआ पूरा शहर का, शहर खत्म, तो कहा ये भी ट्रेलर है। फिर जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इतने लोग मारे गए जो वहां मुस्लिम्स थे, वो सबको कहा हिंदू बन जाओ, सॉरी हिंदुओं को कहा मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तीन ऑप्शंस थे अगर मुसलमान नहीं बनना है, या तो दो ऑप्शंस थे, या तो हिंदुस्तान चले जाओ, या तो सर कटवाओ, या तो मुसलमान बन जाओ, नो फोर्थ ऑप्शन। तो या तो कई तो हिंदुस्तान भाग आए, ट्रेन में बैठे दौड़े, पर रास्ते में उनको मार डाला था, रास्ते में बहुत भयावह दृश्य था, ग्रह युद्ध का मानो जब बंटवारा हुआ, वो तो इतिहास तो अभी कोई बताता भी नहीं है ना, जो जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा वो जानते हैं। तो उस समय ये स्थिति थी, लेकिन शिव परमात्मा ने इनको कहा भी आपको कहीं नहीं जाना है। आते थे आतंक फैलाने वाले लोग, उनसे पूछते थे आप किस धर्म के हो, तो ये कहते थे हम मानवता धर्म के हैं। मानवता तो यही धर्म है, मानव धर्म के हैं। तो और भगवान की रक्षा की, इनको इनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। और फिर कैसे 47 के बाद जब 1950 हुआ, गणतंत्र हुआ, भारत रिपब्लिक हुआ, तब शिव परमात्मा ने संकेत दिया कि अभी आप भारत जाओ, सब कुछ शांति हो गई। और उस समय का जो चीफ मिनिस्टर था सिंध का, वो बाबा का बहुत बड़ा मित्र था, पहले से ही मित्र थे, मित्रता भी अच्छी उनकी बहुत थी। तो कैसे उन्होंने, शिव बाबा ने उनको आदेश दिया कि अभी भारत में जाओ और एक पहाड़ पर जाओ, और यही भारत विश्व गुरु बनेगा, यही भारत विश्व में शांति लाएगा, और इसी भारत से ही सबको शांति का संदेश मिलेगा, तो इसलिए भारत में जाओ और एक पहाड़ पर जाओ। तो कराची में थे वो तो सागर का किनारा था, और पहाड़ पर जाओ तो यहाँ कई पहाड़ों पर आए देखने के लिए, लेकिन ये माउंट आबू का पहाड़ चुना, ये जहाँ आप बैठे हैं, ये जो माउंट आबू है ये राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन है। यहाँ पर राजा महाराजा, जो राजस्थान के महाराजा थे ना, अलग अलग रियासतें थी, छोटी छोटी कई रियासतें, एक एक अभी अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो सब रियासतें थी, तो वो उनके महल है यहाँ माउंट आबू में। पता नहीं आपने कितना यहाँ घूमे हैं आप, ये इनके महल है। यहीं पर एक अलवर पैलेस है, आपने देखा होगा बाहर जाते जब ज्ञान सरोवर आते हैं तो अलवर पैलेस है, हाँ थोड़ी दूरी पर, तो वहां यहाँ से दिखाई देता है, रोड से ही दिखाई देता है। तो उन जब ये भारत गणतंत्र बना, तो आप जानते हैं सारी जो रजवाड़े थे वो सब खत्म हो गए, राजाई खत्म हो गई, प्रजा का प्रजा पर राज्य आ गया। तो इन राजाओं को सीलिंग लगाई, माना इतनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, या प्राइवेट पर्सन को दिया मान लो उस समय। तो इन्होंने क्या किया, ये जितने भी महल है यहाँ, इन सब ने राजाओं ने इनको होटल बना दिया है। अब ये या तो होटल है, या तो वो स्कूल्स है, या तो वो हॉस्टल्स है, या तीन विशेषताएं, होटल, हॉस्टल और स्कूल, ये माउंट आबू की, और ये टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ बहुत मंदिर है, पूरा तीर्थ स्थान है। तो इसीलिए बाबा ने ये चुना, और एक भरतपुर राजा की कोठी है वो पसंद किया, और वहां आकर के शिफ्ट हुए। तो पूरा जहाज दिया उनके जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, उनको जहाज दिया और पूरा सामान लेकर आए, कुछ भी नहीं छोड़ा, पर क्योंकि उस समय जो भागे थे ना हिंदुस्तान, एक पाई भी नहीं ला सके, नंगे पैर, जेब खाली, सब कुछ अपना धन संपत्ति सब छोड़ करके जान बचाने के लिए आए, जो आए होंगे, आपके भी कईयों के पूर्वज आए होंगे ना, ग्रैंडफादर कौन आए थे आपके, मुल्तान से या कहाँ, लाहौर, लाहौर से, और किसके आए होंगे, आपके भी आए होंगे। हाँ, हमारे भी पेरेंट्स वहीं से आए थे, कराची से आए थे, लेकिन सेफ थे। तो क्या है कि तो ये माउंट आबू का पहाड़ और यहाँ पर चुना, तो 1950 में यहाँ आना हुआ। और फिर तो जो समर्पित हुए थे बाबा के पास आए, तो उनके रिलेटिव्स भारत में कई जगह थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप लोग भारत में आ गए हो तो आप हमारे पास आइए। तो बाबा ने उन सब जो बहनें थी, जो आज जो हमारी दादियां जिनको हम कहते हैं, उस समय तो छोटी छोटी थी, तो बाबा ने उनको भेजा। तो वो जहां जहां अपने अपने परिवारों में गई तो वहां वो ओम की ध्वनि करती थी, ओम। और जैसे ओम की ध्वनि करती थी, उन बहनों से उनके रिश्तेदारों को देवी का साक्षात्कार होने लगा, देवी। तो ये भी एक न्यूज बन गई कि पहाड़ और अबू पर्वत से देवी आई है, देवी आई है। तो दिल्ली में पहले जाना हुआ, एक हमारी बहन थी, तो दिल्ली में जैसे गई परिवार में, तो घर ने एक सब ने कहा देवी। तो फिर मंदिरों से निमंत्रण मिला, मंदिरों में भी गए और वहां भी ओम की ध्वनि करती रही और बहुत साक्षात्कार हुए भक्तों को, बहुत कुछ हुआ। ये 1952 की बात है, भारत में आने के बाद पाकिस्तान तो छोड़ दिया फिर, और फिर कई शहरों में गई। तो अब जहां वो जाती थी वहां पर भीड़ लग जाती थी, ज्ञान सुनने आते थे, और फिर एक महीने के बाद कहती थी हम वापस जाएं माउंट आबू बाबा के पास। तो वो कहते थे आप लोग कैसे जाओगे माउंट आबू वापस, हमको छोड़ करके आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हो, आप वापस मत जाइए, यहीं रहिए। तो कहाँ रहेंगे, तो बाबा ने उनको कहा अगर वो चाहते हैं कि आप वहां रहे तो एक मकान लेकर के दे, तो मकान लेकर दे और आप सेवा केंद्र स्थापित करो। तो हमारा पहला सेवा केंद्र आबू से बाहर वहां ये दिल्ली में खुला, पहला सेवा केंद्र। और वहां के बाद फिर दूसरे दूसरे शहरों में हमारे सेवा केंद्र खुलते गए और धीरे धीरे चारों ओर सेवा केंद्र खुलते गए। वहां से माउंट आबू में भाई बहने आते थे और बाबा और मम्मा इनकी पालना करते थे। तो मानो इस प्रकार से पूरे भारत में हमारे सेवा केंद्र खुले और हमारे जैसे हजारों बहनें उसमें समर्पित हुई। तो अब इसका और भी बहुत विस्तार है कि कैसे वो सेवा केंद्र खुलते गए और भाई बहनें आते गए और अपना जीवन बनाते रहे। तो ये एक हिस्सा है, लेकिन और भी बहुत किस्से हैं। तो फिर आप हमारा एक किताब है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, वो आप आगे सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद हमारी मम्मा ने 65 में देह त्याग किया, यहाँ आने के बाद 65 में, और फिर दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी मम्मा के बाद, क्योंकि मम्मा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। बाबा ने कभी अपने ऊपर नहीं लिया, माताओं बहनों को आगे किया, क्योंकि शिव बाबा ये कहते थे जब नारी शक्ति आगे आएगी ना तब इस विश्व का उद्धार होगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो नारी शक्ति स्वर्ग का द्वार है। तो बहनों को आगे किया और इसलिए संस्था में बहनों का वर्चस्व है, बहनों का वर्चस्व, जिसमें हम लोग सेवा केंद्र पर बहनें रहती है, भाई मददगार है क्यों नहीं, लेकिन जो मेन हमारी सेवा केंद्रों की इंचार्जेस है वो बहने हैं। तो ये शिव परमात्मा ने सारा ये कार्य किया है। तो ये हेडक्वार्टर्स में आप आए हो, जहाँ हमारा ये विंग्स का प्रोग्राम चलता है यहाँ ज्ञान सरोवर में, और भी कई स्थान है इसका, फिर बहुत डिटेल है, मैं देख रही हूँ 12 बज रहे हैं, परंतु यहाँ तक हम आपको बताएंगे। फिर कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग किया 69 में, और उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी हमारी मुख्य प्रशासिका बने 2007 तक। फिर दादी जानकी जी जिन्होंने विदेशों में हमारे सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने, तो वो फिर 2020 में आपने देह त्याग किया। फिर दादी हृदय पुष्पा हृदय मोहिनी थे जिनको हम गुलजार दादी कहते थे, जिनके तन में शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा के वाणी चलाते थे, जिनको हम अव्यक्त बाप दादा कहते थे। तो उन्होंने भी पिछले साल ही देह त्याग किया। और फिर अभी हमारी रतन मोहिनी दादी जी, शी इज ऑल्सो 99 ईयर्स, 99 वर्षों की है, नीचे शांतिवन में जो हमारा मेन कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कॉम्प्लेक्स जहाँ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आपने देखा या नहीं पता नहीं, गए हैं? कौन गए हैं? आप गए हैं जी, आप जरूर जाना देखना। और जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे वो पांडव भवन है, वो देखा कि नहीं? वो देख कर आए, आज जाएंगे। तो हम कहते पांडव भवन आप आएंगे, यहाँ चार धाम है ब्रह्मा बाबा के, चार धाम। एक धाम है, एक कम जो बाबा का कमरा है, वो अभी सब जाते हैं वहाँ मेडिटेशन करते हैं, जहाँ बाबा रहते थे, तो वही बेड है और वहाँ नीचे गद्दी है जहाँ बाबा बैठ करके सबसे मिलते थे उसी छोटे कमरे में। अभी तो फिर भी थोड़ा एक्सटेंड किया, लेकिन बहुत पहले छोटा ही था जहाँ बाबा रहते थे। तो बाबा ने 1969 18 जनवरी अपना देह त्याग किया, और उसी स्थान पर पांडव भवन के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था पार्थिव देह का, जिसको हम शांति स्तंभ कहते हैं, बाबा की समाधि है। तो वो भी आप देखेंगे शांति स्तंभ, क्यों? क्योंकि बाबा हम कहते थे तुम्हें शांति स्तंभ की तरह बनना है, जैसे लाइट हाउस होता है ना प्रकाश स्तंभ, वो प्रकाश स्तंभ चारों ओर प्रकाश फैलाता है लाइट हाउस। आपको शांति स्तंभ बन करके चारों ओर शांति का प्रकाश फैलाना है। तो वो भी स्थान है, वो भी देखने का है, शांति स्तंभ पर जाते हैं। और 18 जनवरी पर तो हजारों भाई बहने आते हैं ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। तो एक बाबा का कमरा है, दूसरा शांति स्तंभ है, और तीसरा बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा बैठ करके, एक हट है, कॉटेज जैसा हट है, जिस हट में बाबा बैठते थे और पत्र लिखते थे बच्चों को। तो वो भी देखने जाते हैं जहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। और फिर चौथा है हिस्ट्री हॉल है, वहाँ बड़ा हॉल है, इनसे थोड़ा बड़ा है, जहाँ 200 भाई बहने बैठ सकते हैं। तो वहाँ बाबा वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, तो वो वाणी वहाँ चलाते थे। अभी उसमें चारों ओर जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास है सारा चित्रों में है, तो वो भी आप देखेंगे। आज जाएंगे तो ज़रूर देखना ये सब चार धाम। तो आपको महसूस होगा कि ब्रह्मा बाबा कैसे 1950 में यहाँ माउंट आबू आए, और फिर ये पोखरान हाउस कहलाता था, पोखरान हाउस, पोखरान जहाँ पर एटम बम का एक्सपेरिमेंट हुआ, ये उसके उसके ठाकुर का ये की कोठी थी। तो कम मकान तो एक ही था, लेकिन जमीन बहुत थी, तो फिर अलग अलग मकान बनाए चारों ओर। और कैसे वहाँ रहना हुआ, और 69 में बाबा ने ये देह त्याग किया, उसके बाद हमारा विदेशों में सेवा केंद्र खुले, बहुत लंदन में सबसे पहले खुला, फिर और देशों में खुले, और अभी 140 देशों में अपनी ब्रांचेस हैं। तो उसका भी बहुत विस्तार हुआ। पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन है, जहाँ पर 3,000 भाई बहने बैठ सकते हैं, लेकिन हॉल तो बन गया, पर अकोमोडेशन की जरूरत थी, तो फिर ये जमीन ली गई जो 4 किलोमीटर दूर है पांडव भवन से, अब वहाँ जाएंगे देखेंगे। तो फिर ये जमीन ली गई और यहाँ अकोमोडेशन तो बहुत बनाई, और हॉल एक हमारा हारमोनी हॉल है, वो भी देखा होगा आपने। और यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशंस के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें वैल्यू बेस्ड, कोई भी जो भी प्रोफेशन है वो वैल्यू बेस्ड कैसे हो, उसके ऊपर हमारे सिलेबस बने हुए हैं हर एक विंग के। और फिर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर अपना ग्लोबल हॉस्पिटल है, ठीक है, वो वो भी देखना है, सब आज देखना है। तो ग्लोबल हॉस्पिटल है जहाँ बहुत पैथीज है, सब पैथीज है, केवल एलोपैथी नहीं है, सब प्रकार की पैथी है। और विलेज आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, चारों ओर बहुत गांव हैं और काफ़ी पिछड़े हुए ट्राइबल बेल्ट है, ये ट्राइबल आदिवासी लोग भी बहुत रहते हैं यहाँ, तो उस प्रकार से उनकी भी सेवाएं हम ये ग्लोबल हॉस्पिटल करता है। और फिर नीचे अपना यहाँ पर नकी लेक है, उसके पास अपना ग्लोब ये म्यूजियम है, वो भी बहुत सुंदर है देखने जैसा। पीस पार्क है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सुंदर पार्क है अपना, जो हमारा जैसे इस विश्वविद्यालय का प्लेग्राउंड है, तो वो भी देखने जैसा। पता नहीं कहाँ कहाँ आप देख पाएंगे, सब पांडव भवन में चार धाम, ब्रह्मा बाबा के वहीं रहते थे ना बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के चार धाम, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, बाबा का हिस्ट्री हॉल और बाबा का शांति स्तंभ, ये सब वहीं पर है। ये शिव बाबा ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, नहीं नहीं हैदराबाद सिंध में, हाँ क्योंकि वहीं से तो शुरू हुआ ना हैदराबाद सिंध में। और जो भी समर्पित हुए सबको नाम दिए, जैसे अलौकिक नाम, तो ब्रह्मा बाबा को भी दादा लेखराज नाम था, लेकिन ब्रह्मा आदि पिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि की रचना की, तो मानो वो कार्य अब यहाँ चल रहा है। तो आप जहाँ आए हो ये साधारण स्थान नहीं समझना, आप एक बहुत बड़े अलौकिक स्थान पर आए हो जहाँ से सारे विश्व में परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। अब इसका तो और विस्तार है, आप जितना आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको YouTube पर तो हमारा बहुत कुछ आता है, देखते भी होंगे सुनते भी होंगे, पर ये अभी हम यही समाप्त करते हैं, ताकि आपको भी और भी आगे का प्रोग्राम है, आपको जाना भी है। फिर हम तो पांडव भवन में रहते हैं और वहीं हम आपसे मिलेंगे, कितने बजे आएंगे हम वहीं मिलेंगे आपसे, ठीक है। अभी हम ओम शांति कहते हैं, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।